सिविलाइजेशन माना जाता है। अभी भगवान ने वर्णाश्रम दिया है, वर्णाश्रम सिस्टम। अभी जो भगवान जो चीज़ देते हैं वो परफेक्ट है, लेकिन मतलब उसका पतन नहीं हो सकता है। जैसे तो भगवान ने वर्णाश्रम सिस्टम दी, लेकिन उसका बाद में कास्टिज्म होकर पतन हो जाती है। तो भगवान ने दिया दिव्य चीज़ है, फिर भी कास्टिज्म ने क्यों पतन होता है? और दूसरा सवाल ये है, अब जैसे कि इस्कॉन जो ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं है उसको भी ब्राह्मण दीक्षा देता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स क्वालिटी है जैसे वो रहता है। तो अब जैसे कि नॉन ब्राह्मण कुल ब्राह्मण दीक्षा, तो सपोज मैं ब्राह्मण कुल में नहीं हूँ, अगर मैं वैसे क्वालिटी दिखाता हूँ, लाइफ वैसे लाइफ जीता हूँ, तो मैं ब्राह्मण दीक्षा मिलेगी ऐसे? तो जिसको ब्राह्मण दीक्षा मिलेगी, कुछ सालों बाद उसकी और पीढ़ी आएंगी, वो फिर खुद को जन्म के आधार पर ब्राह्मण कंसिडर करेंगे, और फिर से जो परफेक्ट वर्णाश्रम सिस्टम इस्कॉन फिर से दे रहा है समाज को, वो फिर से कास्टिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी।
ऐसा या तो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको वर्णन करते हैं कि वो क्या है, ये जो वर्णाश्रम जो है भगवान ने दिया है वो परिपूर्ण है, परफेक्ट है सिस्टम, लेकिन ये परिपूर्ण व्यवस्था मनुष्यों के अपरिपूर्णता को निकालने के लिए एक व्यवस्था है। इसके कारण कभी कभी इसका भी पतन हो जाता है, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं। तो वर्णाश्रम का पतन के लिए बहुत सारे कारण हैं। तो और लेकिन इससे बढ़कर और कोई अच्छा सिस्टम नहीं है, तो इसलिए उसको स्वीकार करना चाहिए। सामान्यतः वो जनरली कलयुग में थोड़ा वो ये हो जाता है, लेकिन आप लंबे समय को लेंगे तो दैट इज़ द मोस्ट वर्केबल मॉडल, है ना? तो यही व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से चलता है और लंबे समय तक चलता है, अन्य कोई व्यवस्था चलता नहीं है। जैसे हाल ही में पाश्चात्य देश में वो लोग ऐसे साम्यवाद को इंट्रोड्यूस किया है ना, लेकिन साम्यवाद भी क्या हुआ, कुछ समय तक चला लेकिन उसका भी पतन होगा। तो ये ऐसे अलग अलग पॉलिटिकल सामाजिक व्यवस्था जो है वो ज़्यादा समय तक, डेमोक्रेसी तो वो भी चलने वाला नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे डीमन क्रेजी, डेमोक्रेसी मतलब डीमन क्रेजी। तो क्यों? तो जो अयोग्य लोग क्या करेंगे, लोगों को इंद्र तृप्ति की रुचि दिखाकर वोट लेकर क्या बन जाएंगे, तो वो लोग नेता बन जाएंगे। तो उसके कारण क्या हो जाता है, लोगों का शोषण हो जाता है, लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे भगवान, इसलिए भगवद्गीता यथारूप स्वीकार करना चाहिए। गुण कर्म विभागशः, भगवान ने गुण और कर्म के अनुसार विभाजन किया है ये चार वर्णों को। तो हमें जन्म के आधार, प्रभुपाद जी कहा करते थे ना, कोई एक न्यायाधीश होते हैं, उनके पुत्र कोई प्रशिक्षण के बिना वो न्यायाधीश नहीं बन सकते, है ना, जज नहीं बन सकते, है कि नहीं? तो उनको भी क्या करना चाहिए, लॉ पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए, कोई अन्य वकील के मार्गदर्शन में उनको भी क्या करना चाहिए, तो अभ्यास करना चाहिए, तभी प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी वो आगे जाके बन सकता है। तो वैसे ही सिर्फ जन्म से ऐसा होता नहीं है, तो वो सभी गुण, जन्मना जायते शूद्र संस्कारो भवे द्विजः, वेद पठेत विप्रो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, ऐसे बताया गया। तो हमें वैसे ये भगवान जो बताया है उसको प्रचार करते रहना चाहिए, तब आगे जाके भी ऐसा जो रिस्क जो है हो सकता है, लेकिन हम लोग भगवान की शिक्षाओं को अच्छी तरह से उनको पालन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा इस्कॉन में, समझ में आ गया? हम लोग पालन नहीं करेंगे, यथारूप पालन नहीं करेंगे तो इस्कॉन में भी ऐसे हो सकता है, ठीक है? तो भौतिक जगत ही ऐसे होता है, सब कुछ ऊपर से नीचे आता रहता है ना, भौतिक जगत में है ना, सब कुछ ऊपर से नीचे, ये भौतिक जगत का नियम है। तो इसलिए ऐसा व्यवस्था वर्णाश्रम व्यवस्था भी उसका भी पतन हो जाता है। फिर भगवान आके उसको स्थापित करते हैं। जब भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युता नाम अधर्मस्य तदात्मा नाम सजाम्य, मैं प्रकट होता हूँ बोलते हैं धर्म स्थापना करने के लिए। वो कौन सा धर्म को स्थापना करने के लिए आते हैं? वो वर्णाश्रम धर्म। उस श्लोक के कुछ बाद ही बाद के श्लोक में ही चातुर्वर्ण मया सृष्टम ऐसे भगवान बोलते हैं ना। ठीक है, लेकिन एक चीज हमें जानना चाहिए, हालांकि वर्णाश्रम का पतन हो सकता है क्योंकि वो भौतिक जगत में वो भगवान ने दिया परिपूर्ण है, लेकिन भौतिक जगत में अपरिपूर्णता को निकालने के लिए एक सिस्टम है वो। इसका अर्थ गहरा है। वर्णाश्रम गुण के अनुसार सत्व रज तमोगुण, तो ये सत्व रज तमोगुण क्या है, हमें ये हमारा स्वभाव बनाते हैं वो। तो इन ये सत्व रज तमोगुण का जो प्रभाव है उसको शुद्ध करने के लिए, उससे हमें मुक्त करने के लिए ये वर्णाश्रम सिस्टम है। तो ये बंधन में रहना ही अपरिपूर्णता है हमारे, वो वास्तविक स्थिति नहीं है। इसलिए हमारे अपरिपूर्णता को निकालने के लिए ये परिपूर्ण व्यवस्था है, क्योंकि हम लोग परिपूर्ण नहीं है भौतिक जगत में। हम लोग क्या कर देते हैं, वो व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं। हम लोग भगवान ने जो बनाया उस व्यवस्था को बिगाड़ देते, वो कारण है उसके लिए। भगवान ने जो दिया है परिपूर्ण है, उसको हम लोग पालन नहीं करते हैं ना, इसलिए उसका पतन हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमें याद रहना चाहिए, इस व्यवस्था को छोड़कर अन्य कोई, आप डेमोक्रेसी बनाओ, कम्युनिज्म, साम्यवाद बनाओ, प्रजातंत्र बनाओ, या अन्य कोई भी सिस्टम बनाओ, वो कोई काम करने वाला नहीं। तो इसलिए भारत की संस्कृति को तोड़ने के लिए हजारों साल लगे एक्चुअली, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो बहुत सुदृढ़ सिस्टम है। वो हजारों सालों से इसके पीछे लगे हैं इसको तोड़ने के लिए, और विशेष करके पिछले 70 साल में जो आधुनिक भारत का स्वतंत्रता के बाद में बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसका पतन हो गया। अभी 20 साल में भी बहुत बिगड़ गया अभी समाज, भारत के समाज। गांवों में अभी भी वर्णाश्रम था 20-25 साल के पहले। हाँ, लेकिन अभी सभी शहर में शिफ्ट हो रहे, शहर में मतलब सब उग्र कर्म, असुरी जीवन है ये सब, मांसाहार करना, व्यभिचार करना, सब पशुओं का हत्या करना, स्लॉटर हाउस मेंटेन करना, स्लॉटर हाउस सिविलाइजेशन है ना। क्योंकि टेक्नोलॉजी मतलब लोगों को वो मन विचलित कर देता है, वो मन शांति नहीं रहता, इसके कारण लोग बहुत सारे पाप करेंगे। पाप करेंगे तो धर्म का नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या था आपका?
वही ना, फिर आगे चलते जो अभी जो ब्राह्मण दीक्षा है, आगे की पीढ़ियां बोलेगी ना हम ब्राह्मण,
या या लेकिन हम लोगों को हमेशा यथारूप को भगवद्गीता को केंद्रित रखना चाहिए, भगवद्गीता के शिक्षाओं को हमारे जीवन में लाना चाहिए। अंत में हमें जप तो करना है हरे कृष्ण महामंत्र का, वो जरूरी है, लेकिन ये शिक्षाओं को समझना भी बहुत जरूरी है, लेकिन कौन है, किनको हम लोग बुला रहे हैं, हमारा स्थिति क्या है, ये सब चीज़, और ये सभी ऐसे अलग अलग गुणों में कैसे हम लोग बंध गए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं वर्णाश्रम इज मेंट फॉर सिस्टमेटिक कल्टीवेशन ऑफ कृष्ण कॉन्सियसनेस। हम लोगों को अच्छी तरह से सिस्टमेटिक कल्टीवेशन, ऐसे सहजीय भक्ति चाहिए तो वर्णाश्रम स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी सिस्टमेटिक भक्ति करना है तो ये सब हमें स्वीकार करना चाहिए। नहीं, गुण से, प्रमुख चीज क्या है, गुण प्रमुख चीज क्या है, गुण। ऐसे हो सकता है अच्छे गुण ब्राह्मण गुण वाले ब्राह्मण परिवार में जन्म ले सकते हैं, लेकिन अंत में वो गुण होना चाहिए, वो सर्वोच्च चीज है। और कर्म, पिछले किया हुआ कर्म के अनुसार वो बच्चा उस परिवार में जन्म ले सकता है ना, लेकिन गुण होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है,
मूल अगर देखें तो मूल तो विष्णु है, क्योंकि राम रामावतार हो, विष्णु अपना कृष्ण अवतार हो, परशुराम अवतार या जितने भी अपने, उनका तो लास्ट में शरीर और जो भी त्याग किए, लेकिन विष्णु अवतार का अभी तक कहीं भी उल्लेख नहीं है जो कि विष्णु
या लेकिन भगवान भी त्याग नहीं करते हैं। जैसे सूरज प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, भगवान के भी शरीर सच्चिदानंद है। भगवान को छोड़िए जीव भी क्या है, सच्चिदानंद है, लेकिन माया के प्रभाव में आके ये भौतिक शरीर धारण करते हैं, क्योंकि भगवान माया के परे है। वो जब इस जगत में प्रकट होते हैं तो माया हमारे जैसे भौतिक शरीर को प्राप्त नहीं करते हैं। तो ये समझना कि भगवान राम या कृष्ण वो शरीर त्याग दिया, ये गलत बात है। नहीं, आप पूरा भौतिक जगत के संबंध में सब कुछ समझ रहे हैं आप। हमने क्या बताया, आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे लोक है, वहाँ पे भगवान के अलग अलग रूप विद्यमान रहते हैं। समय समय पर यहाँ पर जब वो उतर कर आते हैं तो उसको अवतार कहते हैं। अवतार मतलब वन हु डिसेंड्स। तो इसलिए सब शाश्वत है, भगवान के सभी रूप शाश्वत है। जैसे सूरज सुबह निकलते हैं, शाम को उनका अस्त होता है, ऐसा नहीं कि सूरज मर गए, है ना। आप अमेरिका में आपके मित्र को आप फोन करके पूछेंगे सूरज कहाँ है, वो बताएंगे कि सूरज हमारे सर के ऊपर है करके। यहाँ पर सूरज नहीं दिख रहे लेकिन वहाँ पर तो है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पर लीला करते हैं, फिर दूसरे जगह पर जाके लीला करते हैं। तो इसलिए नित्य लीला अनुरक्तो बताए, नित्य लीला अनुरक्त मतलब हमेशा वो लीला में लगे रहते हैं, ऐसे उपनिषद में बताया गया। पुरुष बोधनी उपनिषद है ये, एको देवो नित्य लीला अनुरक्तो, ऐसे है ना। तो ऐसे हमें समझना चाहिए उसको। तो कभी कभी ऐसे भी लोग बोलते हैं कि भगवान राम कृष्ण से पहले आ गए, तो आप क्यों बोलते हैं कृष्ण श्रेष्ठ सर्वोच्च है करके। तो ये हम लोग क्या सोचते हैं, भौतिक जो काल है उसके अनुसार हम लोग सोचते हैं। शाश्वत काल में है ना, काल क्या है, शाश्वत है वो। हम लोग भूत भविष्य मतलब इसको एक सीमित काल के अनुसार हम लोग देखते हैं, और काल भी चक्र के रूप में चलता है। चक्र में कौन पहला कौन अंत है, कौन बाद में, ऐसे घूम रहा है चक्र। मतलब सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग ऐसे चल रहे हैं, तो कौन पहला है कौन बाद में है कैसे हम लोग बता सकते हैं उसको, है कि नहीं, नहीं बता सकते। तो काल के आधुनिक समाज में शिक्षा में तो वो लोग क्या है, काल के उनके अनुसार काल कैसे चलता है, एक बिंदु से शुरू होता है, ऐसे सीधा दूसरे बिंदु की ओर जाता है। वो स्टीफन हॉकिंग करके एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। उसमें वो एक चैप्टर है द एरो ऑफ टाइम, ऐसे एक चैप्टर है। काल नामक एक बाण, यू नो, बाण, अब बाण कैसे जाता है, ऐसे सीधा जाता है ना ऐसे। तो ये वैज्ञानिकों का धारणा है, आधुनिक वैज्ञानिकों का। लेकिन काल ऐसे सीधा नहीं जाता है, वो घूमता है, चक्र बोलते हैं ना। तो ये लॉजिकल है, क्यों लॉजिकल है, आप देखिए अभी 6 बजे निकल गया, फिर से 6 बजे आ जाता है ना, और शनिवार चला गया, फिर से शनिवार आ जाता है। तो ऐसे अभी अगस्त चला गया, फिर से अगस्त आ जाता है। कोई बोल सकता है आप लोगों ने ऐसे सेट कर दिया इसको, कैलेंडर को या ऐसे समय को, ऐसे क्लॉक को सेट कर दिया, लेकिन दिन और रात का ये घूमना कौन बताएंगे। या जो सीजन्स है, बारिश का मौसम, सर्दी का मौसम या गर्मी का मौसम, ये आते हैं ना, वो भी बदल बार बार चक्र के वो एक के बाद ऐसे आते रहते हैं चक्र के रूप में। तो ये नेचुरल फेनोमेना है, खाल चक्र क्या है, चक्र के रूप में जो खाल चलता है, तो पिछले पीछे प्रसाद आप दे सकते हैं। हाँ कर दीजिए कर दीजिए, जो बातचीत कर सकते हैं करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो प्रसाद ले सकते हैं आप प्रसाद वितरण, क्योंकि किसी किसी को जल्दी जाना होता है तो आप आ सकते हैं आगे। तो ऐसे चक्र में चलता है, कौन पहला आया कौन पीछे आया, शाश्वत काल में ये काल चक्र में। या वही मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन आप काल चक्र में कौन पहला है कौन बाद में है, तो आपकी धारणा आरंभ से स्कूल में आपको ऐसे पढ़ाया गया है ना, एरो ऑफ टाइम है ना, तो वी आर कंडीशन्ड बाय दैट। एक्चुअली हम लोग शास्त्र के अनुसार हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग, इसलिए काल को शाश्वत बताया भगवान ने, अहम एवाक्षय कालो ऐसे भगवान। वो लोगों को ये सब ज्ञान नहीं है,
सब लोग आश्रय थे हम लोग इंडियन के ऊपर, रिबर्थ क्या होएगा, एक ही लाइफ है ये सब। अभी इवन फॉरेनर्स आल्सो वो लोग भी मान रहे कि आप रिबर्थ है
या मतलब
एवरीवन इज नाउ इंडियन वे टू इन, लेकिन हम लोग इंडियंस को क्या है, फॉरेनर आके सर्टिफिकेट देना पड़ता है तभी हम लोग मानते हैं।
बेसिकली सब लोग छोड़ दिया ये सुनना, छोड़ दिया भगवद गीता, हाँ गीता भगवत, इसमें बहुत सारा ऐसे बहुत तर्क के आधार पर सब वर्णन किया गया। तो पुनर्जन्म तो प्रभुपाद जी पुनर्जन्म कहते हैं, इस जीवन में ही पुनर्जन्म हो रहा है, हाँ शरीर हम लोग बदल रहे या ज्यादा से ज्यादा ऐसे आजकल सरकार ऐसे प्रोत्साहन देता है सबको, और विशेष करके ये जो स्कूल सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम क्या है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए लेबर बनाने का एक यंत्र है वो, आप समझ में आ गए आपको। तो पहले जमाने में क्या, जैसे भगवान कृष्ण भी देखिए, 5 वर्ष से जब वो बालक थे लीला कर रहे थे वो, तो बछड़ों को लेकर बाहर जाते थे वो, हाँ अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, और उसके बाद जब वो 1-2 साल में बड़े गायों को भी लेकर जाना शुरू, वो पूर्ण गोप बन गए, हाँ गोपाष्टमी के दिन, हाँ है ना। तो आजकल उस समय में बच्चों को क्या किया जाता है, स्कूल में डाला जाता है, हाँ वो लोग सोचते हैं हम लोग बच्चों का भलाई कर रहे करके, अंत में कि उनको क्या पर लेकर आके आया जाता है, कारखानों में लेके डाल दिया जाता है। हाँ दिन रात नाइट शिफ्ट में डे शिफ्ट में, हाँ काम करो मेहनत करो, तो यही स्कूल सिस्टम है एक्चुअली, हाउ टू प्रिपेयर देम टू बिकम लेबर्स फॉर इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ऐसे कारखानों को समाज में लेबर बना, इसमें कोई विद्या नहीं है, इसलिए मैं बताया ना अविद्या करके ना स्कूल सिस्टम में। तो उनको छोड़िए आध्यात्मिक साक्षात्कार, आध्यात्मिक ज्ञान छोड़िए, तो भौतिक जीवन भी कैसे सुखी रहना चाहिए भौतिक जीवन में वो भी पता नहीं है आधुनिक समाज में लोगों को, सिर्फ भ्रमित है सब। ऐसे ये सब चमक सब ऐसे चमक दमक से चीज क्या है, भगवान भगवद गीता में भौतिक ज्ञान भी बताते हैं, सब कुछ बताया है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, खाने का क्या महत्व है, आयु सत्व बलारोग्य भगवान बोलते हैं, अन्न खाने का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन अवधि बढ़ना चाहिए, आयु, हमारे हृदय और मन शुद्ध होना चाहिए, शारीरिक बल मिलना चाहिए और हेल्थ, आरोग्य, आरोग्य मतलब हेल्थ होना चाहिए। ये सब चीज़ भगवान खाने के बारे में बताए, युक्त आहार कितना काम करना चाहिए, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से करने से, तो और कैसे बारिश और अन्न प्राप्त होता है, अन्नाद भवंती भूतानी पर्जन्याद अन्न संभव है यज्ञात भवती पर्जन्य। अभी वो कर्नाटक में और तमिलनाडु में फाइटिंग चल रहा है ना अभी, हाँ पानी के लिए, तो क्या ये पशु, हाँ तो आगे जाके, तो आगे जाके पानी के लिए भी इतना, हाँ कोई कोई बोलते हैं अभी तेल के लिए लड़ रहे लोग, हाँ है ना, क्यों वहाँ पर आएस आएस, वो सब बाहरी दृष्टि, बाहरी बकवास है वो सब। वो मेन चीज़ लड़ने के लिए क्यों, तेल के लिए, ईंधन के लिए लड़ते हैं लोग, हाँ आगे जाके पानी के लिए लड़ेंगे अभी, हाँ तो आप पशु समाज में आपने कैसे पशु पक्षी कोई अन्न के, अन्न ना होने के कारण या पानी ना होने के कारण कोई मरते हैं, ऐसा आपने देखा हुआ, देखा है, विरला आप देखेंगे, हाँ तो आधुनिक समाज क्या है, पशु से, पशुओं से भी गिर गया। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि हम लोग सब नास्तिक बन गए, सब लोग धर्म को त्याग दिया हम लोगों ने, सब पाप करते हैं, भगवान को प्रसन्नता करने के लिए कोई यज्ञ संकीर्तन नहीं करते हैं। यज्ञात भवती पर्जन्य, यज्ञ से क्या होता है, बारिश आता है। हम लोग कितना भी हाईटेक सिटी बनाए, अंत में हमें अन्न और पानी चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं, तो या तो वो क्यों बिगड़ गया, 1974 में अपना इंदिरा गांधी जी ना, उन्होंने एक लैंड रिफॉर्म एक्ट बना दिया उन्होंने, तो सभी को, पहले जमाने में क्या होता है, बड़े जो बच्चा होता है उसको सभी संपत्ति मिलेगा, अन्य सभी लोग उनके साथ में रहेंगे, उनको सहायता करेंगे, वो देखभाल करेंगे, उनको देखभाल करना उनको वो अपना धर्म मानते थे, सभी बच्चों को संभालना, सबको विवाह करना, सब कुछ करना उनको धर्म मानते थे, और वो लोग भी उनको सहायता करने में धर्म, अपना धर्म मानते थे। तो इन्होंने जब ऐसे नियम बना दिया तो सब तोड़ फोड़, सब तो सब प्रसाद सर्विंग कर दीजिए माता जी, कर दे कर दे कर दे कर दे, लेट हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जब जैसे ऐसे नेता लोग ऐसे नियम बना देते हैं ना, समाज के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ जाता है। जैसे नेहरू, उसने ये डिवोर्स, विवाह विच्छेद करना शुरू कर दिया। अभी पिछले साल ये लोग, पिछले साल ये सब यू नो लिव इन रिलेशनशिप कर दिया, तो आगे समय, आगे समय, आने वाले समयों में बहुत इसका प्रभाव होने वाला है सब। तो ऐसे नास्तिक, पहले जमाने में क्या होता था, लॉ मतलब कैसे होता था, मनु संहिता के अनुसार सब लोग जीवन, मनुष्य समाज में मनु संहिता के अनुसार जीवन बिताते थे। तो अभी क्या है, अपना मन गणित ढंग से कुछ वो लोग इकट्ठा आके, लॉयर्स इकट्ठा आके कुछ बना देते हैं, हाँ या मंत्री लोग आके कुछ ऐसा बिल बना देते हैं, ऐसा लॉ बना देते हैं अपने स्वार्थ के लिए।